मैं अजीत कुमार, बीए द्वितीय वर्ष का छात्र, मैं आपके लिए भारत का संविधान एक परिचय इस पुस्तक जो कि डॉक्टर दुर्गादास बसु द्वारा लिखित है, इसके अंतर्गत मैं सरकार और लोक सेवकों के अधिकार और दायित्व इस विषय की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। हमारे संविधान में संघ और राज्यों को विधिक व्यक्ति माना गया है जो संपत्ति के स्वामी हो सकते हैं, संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, संविदा कर सकते हैं, व्यापार और कारोबार चला सकते हैं, विधिक कार्यवाही ला सकते हैं या विधिक कार्यवाही में प्रतिरक्षा कर सकते हैं, वैसे ही जैसे कोई अन्य प्राइवेट व्यक्ति। यह सब उन्हीं उपांतरों के अधीन होगा जो संविधान में विनिर्दिष्ट किए जाएँ। संघ और राज्य अनेक प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। पहला, उत्तराधिकार। मोटे तौर से संविधान के प्रारंभ के समय जो संपत्ति, आस्तियां, अधिकार और दायित्व डोमिनियन ऑफ इंडिया के या गवर्नर के प्रांत के या देसी रियासत के थे, वे संविधान के आधार पर संघ को या तत्समान राज्य को प्राप्त हो गए। अनुच्छेद 394 से 95 में यह लिखा गया है। दूसरा, स्वामी विहीन। भारत के राज्य क्षेत्र में कोई संपत्ति जो यदि यह संविधान प्रवर्तन में नहीं आया होता तो राजगामी या व्यपगत होने से या अधिकारवान स्वामी के अभाव में स्वामी विहीन होने से यथास्थिति हिज मेजेस्टी को या देसी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती। वह संपत्ति यदि राज्य में स्थित है तो ऐसे राज्य में और किसी अन्य देश, किसी अन्य दशा में संघ में निहित होगी। अनुच्छेद 296 यह कहता है। इसी प्रकार बिना कोई उत्तराधिकारी छोड़े वैधानिक मृत्यु अर्थात उसके बारे में 7 वर्ष से अधिक समय तक सुना नहीं गया तो मरने वाले किसी व्यक्ति की विवादित संपत्ति गांव सभा की निहित करेगी और उसी के ही नाम अभिलिखित किया जाना चाहिए, चाहे उसने अपनी आपत्ति दाखिल न की हो। तीसरा, समुद्र के नीचे की वस्तुएं। भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी। यह अनुच्छेद 297 में लिखित है। चौथा, विधि द्वारा अन्वेषण, अर्जन या अधिग्रहण। संघ और राज्य के विधान मंडल दोनों ही विधि बनाकर संपत्ति का अन्वेषण, अर्जन या अधिग्रहण करने के लिए सक्षम है। यह बात 7वीं अनुसूची की सूची 3 प्रविष्टि 42 में लिखित है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 क्लोज 2 का लोप करके प्रतिकर देने की संवैधानिक बाध्यता समाप्त कर दी गई है। पांचवा, कार्यपालिका शक्ति के अधीन अर्जन। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार अपनी अपनी सरकार के प्रयोजन के लिए प्राइवेट व्यक्तियों के समान ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रय करके या विनिमय द्वारा संविदा कर सकेगी और विक्रय या विनिमय द्वारा संपत्ति अर्जित कर सकेगी। यह बात अनुच्छेद 298 में लिखित है। और प्राइवेट निकायों, कंपनियों को संविदाएं, अनुज्ञप्तियां स्वीकृत करने में सरकार के विनिश्चय को केवल असद्भाव, अयुक्तिसंगत या असंगत बातों के आधार पर स्वीकृति, विहित प्रक्रिया का अनुपालन या संवैधानिक या कानूनी उपबंध के अतिक्रमण के आधार पर ही प्रश्नगत किया जाता है, किंतु किसी व्यक्ति की संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करने के लिए उसे प्राधिकृत करने वाली विधि होनी चाहिए। यह बात अनुच्छेद 300 क में लिखित है। व्यापार करने की शक्ति के विषय में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संघ और राज्य की सरकारें कोई भी व्यापार या कारोबार करने के लिए उस प्रयोजन के लिए अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई संविदा करने के लिए सक्षम है। यह कारोबार सक्षम विधान मंडल के द्वारा विनियमित किया जा सकेगा, अर्थात यदि संघ सरकार राज्य सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में कारोबार करती है तो यह कारोबार राज्य विधान मंडल की विधायी अधिकारिकता के अधीन होगा। यह बात अनुच्छेद 298 का परंतु क में लिखी गई है। जब संघ या राज्य अपने द्वारा चलाए जाने वाले व्यापार या कारोबार की बाबत विधान बनाते हैं तब उन संवैधानिक मर्यादाओं से उन्मुक्ति होती है जिनके वह अन्यथा अधीन होती। यदि कोई सामान्य विधि किसी नागरिक को किसी विशिष्ट कारोबार के चलाने से पूर्णतः या भागतः अपवर्जित करती है तो अनुच्छेद 19 क्लोज 6 के अधीन ऐसी विधि की युक्ति युक्तता की परीक्षा की जाएगी। यदि राज्य किसी युक्ति युक्त औचित्य के बिना किसी प्राइवेट व्यापारी के पक्ष में कोई एकाधिकार का सृजन करता है तो न्यायालय ऐसी विधि को असंवैधानिक ठहरा सकता है। किंतु यदि कोई विधि व्यापारी के रूप में राज्य के पक्ष में कोई एकाधिकार का सृजन करती है, चाहे नागरिक उसे भागतः अपवर्जित हो या पूर्णतः, तो ऐसी विधि की युक्ति युक्तता को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यह बात अनुच्छेद 19 क्लोज 6 का अपवाद 2 में लिखी गई है। संक्षेप में संघ या राज्य न केवल व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं बल्कि ऐसे व्यापार की बाबत अपने पक्ष में एकाधिकार का सृजन भी कर सकते हैं। इसे सामान्यतः व्यापार का राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। अब हम धन उधार लेने की शक्ति के विषय में पढ़ेंगे। दोनों सरकारों को उधार लेने की शक्ति के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं। जैसा बताया जा चुका है कि संघ और राज्य की सरकारों को प्राइवेट व्यक्तियों के समान ही अपनी अपनी कार्यपालिका शक्ति के क्षेत्र में संविदा करने की शक्ति है। सरकार की यह संविदा शक्ति संविधान द्वारा अपेक्षित कुछ विशेष औपचारिकताओं के अधीन है। ये औपचारिकताएं उनके अतिरिक्त हैं जो भारत में की गई संविदाओं के लिए संविदा अधिनियम के अधिकथित हैं। इन विशेष शर्तों को अधिरोपित करने का कारण यह है कि सरकार की संविदाओं में कुछ समस्याएं होती हैं जो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा की गई संविदाओं में उत्पन्न नहीं होती। जैसे एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके अनुसार उसके अभिकर्ता संविदा करें, तभी सरकार संविदा से आबद्ध होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो किसी भी लोक सेवक द्वारा छिपे तौर से की गई संविदा के कारण सार्वजनिक निधि का अपव्यय होगा। संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई संविदाओं की औपचारिकता अनुच्छेद 299 में दी गई है। उसके अनुसार क संविदा का निष्पादन यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। ख संविदा का निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से किया जाना चाहिए। ग संविदा यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा की गई कही जानी चाहिए। यदि इन शर्तों में से किसी का अनुपालन नहीं किया जाता है तो संविदा न तो सरकार पर आबद्ध कर होगी और न सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगी। जिस अधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में यह संविदा की थी उसके विरुद्ध वाद लगाया जा सकता है। सामान्य न्यायालयों में प्राइवेट व्यक्ति की भांति वाद लेने के सरकार के अधिकार और उसके विरुद्ध वाद लाए जाने पर दायित्व के बारे में कुछ विशेष प्रतिबंध हैं। संघ और राज्य के विरुद्ध वाद। संविधान का अनुच्छेद 300 क्लोज एक यह कहता है, भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद के या ऐसे राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किए जाएं, वे अपने अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला सकेंगे या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार यदि यह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो भारत डोमिनियन और तत्स्थानी प्रांत या तत्स्थानी देशी राज्य वाद ला सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था। यह अनुच्छेद किसी वाद हेतु को जन्म नहीं देता किंतु यह केवल यह कहता है कि राज्य वाद ला सकता है और उस पर वाद लाया जा सकता है, वैसे ही जैसे किसी विधिक व्यक्ति की दशा में होता है। यह उन सभी विषयों में किया जा सकेगा जिनमें यदि वह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो वाद लाया जा सकता था। यह शक्ति समुचित विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के अधीन होगी। अभी तक ऐसा कोई विधान नहीं बनाया गया है, इसीलिए राज्य के दायित्व के बारे में अधिष्ठाई विधि के लिए हमें संविधान के प्रारंभ के पहले की विधि के बारे में निर्देश करना होता है। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, पहला है वाद लाने का अधिकार। भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकती है और राज्य सरकार अपने राज्य के नाम से वाद ला सकती है, उदाहरणार्थ मुंबई राज्य। कोई भी सरकार किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी अन्य सरकार के विरुद्ध वाद ला सकती है, जैसे संघ एक या अधिक राज्यों के विरुद्ध वाद ला सकता है, कोई राज्य किसी अन्य राज्य या संघ के विरुद्ध वाद ला सकता है। यह बात अनुच्छेद 131 में कही गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि जब वाद किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध होता है तो वह वाद निम्नतम आधिकारिकता रखने वाले न्यायालय के संस्थित किया जाता है। यह प्रक्रिया विधि के अनुसार है। दो सरकारों के बीच वाद सर्वोच्च अधिकरण में संस्थित किया जाता है, अर्थात उच्चतम न्यायालय में, जिसे परिसंघ संबंधी वाद पर अनन्य आरंभिक आधिकारिकता है। दूसरा, वाद के प्रति दायित्व। इस विषय में संविदाजात दायित्व और अपकृत्य या सिविल दोष के विरुद्ध दायित्व के बीच विभेद करना होगा, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से संविधान के प्रारंभ होने तक यह भेद किया जाता रहा है और संसद के विधान के अधीन रहते हुए संविधान के अनुच्छेद 300 ने इस स्थिति को कायम रखा है। इसके अंतर्गत इसके उसको हम कई बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला है क, संविदा। भारत में संविदा के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या विद्यमान सरकार के विरुद्ध सीधे वाद लाना अनुज्ञात किया गया है। इंग्लैंड में ब्रिटिश प्रजा सम्राट के विरुद्ध पिटीशन ऑफ राइट देकर वाद लाती थी। भारत शासन अधिनियम में सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों से संविदा करने की शक्ति अभिव्यक्त रूप से दी गई है और संविधान के अनुच्छेद 299(1) में तत्समान उपबंध करके इस स्थिति को बनाए रखा गया। अनुच्छेद 299 द्वारा विहित औपचारिकताओं के अधीन रहते हुए और कुछ कानूनी दशाओं में या परिसीमाओं के अधीन रहते हुए हमारे संविधान के अधीन राज्य का संविदाजात दायित्व वही है जो किसी व्यक्ति या संविदा की सामान्य विधि के अधीन होता है। ख, अपकृत्य। विद्यमान विधि के अधीन राज्य का अपने सेवकों द्वारा किए गए अनुयोज्य दोषों के लिए क्या दायित्व है, यह अपने सादे ढंग से नहीं कहा जा सकता जितना संविदा के बारे में कहा जाता है। यह विधि अनावश्यक रूप से जटिल हो गई है, क्योंकि उसे कॉमन लॉ के अधीन ब्रिटिश सम्राट की स्थिति पर और सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति पर आधारित किया गया है। ये दोनों ही बहुत पुराने हैं और इतिहास की विधि में परिवर्तन होने के कारण मानने योग्य नहीं है। इंग्लैंड में भी क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 द्वारा कॉमन लॉ की यह सुक्ति अधिक्रांत हो गई कि राजा कोई अन्याय नहीं कर सकता, किंतु तत्समान विधान के अभाव में भारत में न्यायालयों के पास उक्त सूची पर आधारित राज्य की अनुमुक्ति के पुराने सिद्धांत पर आधारित निर्णय जनित विधि का अनुसरण करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार भारत में विद्यमान विधि सरकार के प्रभुता संपन्न और प्रभुताहीन कृत्यों में भेद करती है। प्रभुता संपन्न कृत्यों के प्रयोग में सरकार द्वारा या उसके अधिकारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है। यह अभी निर्धारित किया गया है कि सरकार के प्रभुता संपन्न कृत्यों के प्रयोग के दौरान किसी व्यक्ति को की गई क्षति के लिए सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी, जैसे निम्नलिखित के लिए। पहला, युद्ध के दौरान माल का अधिग्रहण। दूसरा, सेना के लिए सड़क बनाना या उसकी मरम्मत करना। तीसरा, न्याय प्रशासन। चौथा, पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुचित गिरफ्तारी, उपेक्षा या अतिचार। पांचवा, विधान मंडल द्वारा अधिकारियों को अधिरोपित कृत्यों के अनुपालन में उनके द्वारा किए गए दोष, जब तक कि अधिनियम में ही वे परिसीमाएँ या दशाएँ विद्यमान न हो, उनके अधीन कार्यपालिका कृत्य किए जाने हैं अथवा सदोष कार्य को राज्य द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत या अनुसमर्थित नहीं किया गया हो। छठा, अधिकारियों की उपेक्षा के कारण सरकार की अभिरक्षा से जंगम संपत्ति की हानि। सातवां, सांविधिक कर्तव्य करते हुए किसी अधिकारी की उपेक्षा के कारण सरकार की अभिरक्षा से धन का सही स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति को संदाय किया जाना, जहां ऐसे संव्यवहार से सरकार को कोई फायदा नहीं होता। उदाहरण के लिए, जहां खजाना अधिकारी किसी कुटरचित चेक पर गलत व्यक्ति को धन का संदाय कर देता है, क्योंकि उसने हस्ताक्षर की तुलना करने में अपने कानूनी कृत्य के पालन में उपेक्षा की थी। किंतु धीरे धीरे कस्तूरीलाल के निर्णयाधार और प्रभुता संपन्न कृत्यों की सूची छोटी होती जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने जनता का पक्ष लिया है। रुदल शाह में उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्रता से वंचित करने के आधार पर प्रतिकर का आदेश किया था। नगेंद्र राव में उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि किसी सभ्य समाज में यह नहीं हो सकता कि कार्यपालिका देश की जनता के साथ खिलवाड़ करे और संप्रभु होने का दावा करे। राज्य को विधि के ऊपर रखना नागरिकों के प्रति अन्याय है और अनुचित है। आधुनिक अर्थ में संप्रभुता संपन्न कृत्यों और असंप्रभु कृत्यों के बीच विभेद विद्यमान नहीं है। कस्तूरीलाल के केस के संबंध में निर्णयाधार उन्हीं थोड़े से और सीमित मामलों में उपलब्ध हैं जिनमें कानूनी प्राधिकारी ऐसे कृत्यों के प्रत्यायोजिती के रूप में कार्य करता है जिनके लिए न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है। कस्तूरीलाल केस में प्रतिपादित संप्रभु शक्ति के सिद्धांत से नए सिद्धांत निकलकर आए हैं और इस सिद्धांत का लाभ लोक कल्याणकारी राज्य को बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, जिसमें कि सरकार के कार्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से सभी को संप्रभु शक्ति के प्रयोग से संबंधित क्रियाकलाप नहीं कहा जा सकता है। रेलगाड़ी चलाना वाणिज्यिक क्रियाकलाप है। विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रभार के संदाय पर यात्रियों को रहने और खाने की सुविधा प्रदान करने के लिए यात्री निवास स्थापित करना भारत संघ की वाणिज्यिक क्रियाकलाप का अंग है, जिसकी बराबरी संप्रभु शक्ति के प्रयोग से नहीं की जा सकती। रेलवे स्टेशनों और यात्री निवासों को सम्मिलित करते हुए रेलगाड़ियों को चलाने और स्थापनों का प्रबंध देखने के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारी वाणिज्यिक क्रियाकलाप करने वाले सरकारी तंत्र के आवश्यक संघटक भाग हैं। यदि ऐसे कर्मचारियों में से कोई कर्मचारी अपकृत्य करता है तो संघीय सरकार उस व्यक्ति के प्रति नुकसानी के लिए उत्तरदायी ठहराई जा सकती है जिसके साथ उन कर्मचारियों ने अपकृत्य किया है। जैसा कि कॉमन कॉज और रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996 6ACCC 667 में संप्रेषण किया गया है कि कस्तूरीलाल केस की आबद्ध कर पूर्व निर्णय के रूप में प्रभावकारिता धीरे धीरे समाप्त हो गई है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपने नाम से बुक किए गए रेलवे यात्री निवास के एक कमरे के लिए सामूहिक बलात्संग की शिकार विदेशी यात्री स्त्री को उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित 10 लाख रुपए के प्रतिकर को मान्य ठहराया। उसी प्रकार सरकारी अस्पतालों में नियोजित व्यक्ति संप्रभु उन्मुक्तता का दावा नहीं कर सकते हैं और सरकार अपने अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी होगी। दूसरी ओर ऐसे संव्यवहारों के अनुक्रम में लोक सेवकों द्वारा किए गए दोष के लिए सरकार के विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा, जहां कोई व्यापारी कंपनी या प्राइवेट व्यक्ति भी वह काम कर सकता था। पहला, किसी गोदी या रेल में नियोजित सरकार के सेवकों की उपेक्षा द्वारा होने वाली क्षति। दूसरा, सरकार और किसी प्राइवेट व्यक्ति के बीच किसी भूमि पर अधिकार के बारे में विवाद के दौरान प्राइवेट संपत्ति पर अतिचार या उसे पहुंचाई गई नुकसानी के लिए जो चाहे कानूनी शक्तियों के आभासी प्रयोग में ही क्यों न किए गए हों। तीसरा, विधि के विरुद्ध प्राप्त किए गए लाभ को लौटाने के लिए राज्य के विरुद्ध वाद उसी प्रकार किया जा सकता है जैसे प्राइवेट स्वामी के विरुद्ध। उदाहरण के लिए, जहां सरकार उसके अधिकारियों द्वारा अविग्रहित संपत्ति या धन को विधि के विरुद्ध अपने पास रखती है, वहां ब्याज सहित उसकी वसूली के लिए वाद सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है। चौथा, सरकार द्वारा प्रकाशित संकल्प से होने वाली मानहानि। पांचवा, सरकार के किसी यान द्वारा की गई क्षति के लिए जहां ऐसा यान किसी प्रभुता संपन्न कृत्य में या किसी दुर्भिक्ष राहत कार्य में नहीं लगा हुआ था। अब हम राज्य के प्रधान के विरुद्ध वाद इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ऐतिहासिक कारणों से कुछ मामलों में राज्य को दायित्व से उन्मुक्ति है, किंतु हमारे संविधान में किसी लोक सेवक को ऐसे शासकीय कृत्यों के लिए जो देश की सामान्य विधि के अधीन अविरुद्ध है, कोई उन्मुक्ति नहीं दी गई है। इस नियम का अपवाद वह उन्मुक्ति है जो राज्य के अध्यक्षों को दी गई है, अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल को। यह उनके पद पर रहते हुए किए गए सभी कार्यों के लिए है, चाहे वे राजनीतिक हों या व्यक्तिगत। यह बात अनुच्छेद 361 में कही गई है। अब हम राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने शासकीय कृत्य के लिए उन्मुक्ति इस शीर्षक को पढ़ेंगे। पहला है शासकीय कृत्य। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने शासकीय कृत्यों के लिए दी गई उन्मुक्ति आत्यंतिक है, किंतु यह राष्ट्रपति और राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से दी गई है। कोई अन्य व्यक्ति अपने विधिक दायित्व से इस आधार पर नहीं बच सकता है कि वह कार्य राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश के अधीन किया गया था। राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है और उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता। यह स्थिति उनके द्वारा किए गए या किए गए तथ्य प्रयित किसी कार्य के लिए या संविधान द्वारा किसी विधि द्वारा की गई शक्तियों के प्रयोग में या उनमें अधिकथित कर्तव्यों के अनुपालन में की गई किसी संविदा के लिए है। यद्यपि शासकीय शक्तियों के प्रयोग में किए गए असंवैधानिक कार्य के लिए राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अधीन महाभियोग चलाया जा सकता है और राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है, किंतु न्यायालयों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस व्यक्तिगत उन्मुक्ति के नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई न्यायालय उसे किसी शक्ति का प्रयोग करने से या किसी कर्तव्य का अनुपालन करने से विरत रहने के लिए भी विवश नहीं कर सकता। यह किसी न्यायालय द्वारा निकाली गई रिट या निर्देश के अधीन नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के सदोष शासकीय कृत्यों से व्यथित व्यक्ति को दो प्रकार के उपचार मिलते हैं। पहला, जहाँ ऐसी कार्यवाहियाँ हो सकती हैं वहाँ वह सरकार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करे। यह बात अनुच्छेद 361 क्लोज एक का परंतुक दो में लिखी गई है। दूसरा, लोक सेवक के विरुद्ध जिसने राष्ट्रपति या राज्यपाल का सदोष आदेश निष्पादित किया था उसे ही आदेश की परिधि या अपकृत्य संबंधी सामान्य विधि के अधीन व्यथित व्यक्ति को कुछ परिसीमाओं के अधीन रहते हुए उत्तर देना होगा। अब हम मंत्रियों की स्थिति इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि संविधान ने राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके शासकीय कृत्यों के लिए व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्रदान की है, किंतु मंत्रियों को ऐसी कोई उन्मुक्ति नहीं है। किंतु मंत्रियों की विचित्र स्थिति के कारण यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के शासकीय कृत्य के लिए न्यायालय में मंत्री को दायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि शासकीय कृत्य राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जैसा पहले बताया जा चुका है, इस बारे में स्थिति इंग्लैंड से भिन्न है। इंग्लैंड में सम्राट के प्रत्येक शासकीय कृत्य पर मंत्रियों के प्रति हस्ताक्षर होते हैं और न्यायालय में मंत्री ही उत्तरदायी होता है। हमारे संविधान में मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, केंद्र में भी और राज्य में भी, किंतु इंग्लैंड वाले अर्थ में विधिक उत्तरदायित्व नहीं अपनाया गया है। यहाँ ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यों पर मंत्रियों के प्रति हस्ताक्षर हों। इसके अतिरिक्त न्यायालय इस बात की जांच नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को मंत्री ने क्या सलाह दी थी। अतएव यह स्पष्ट है कि मंत्रियों की सलाह पर किए गए शासकीय कार्य के लिए मंत्री दायी नहीं होंगे, किंतु अपनी व्यक्तिगत हैसियत के लिए किए गए अपराध के लिए उन्हें कोई उन्मुक्ति नहीं है। अब हम पदावधि के दौरान व्यक्तिगत कार्य इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। व्यक्तिगत कार्य, राष्ट्रपति या राज्यपाल की अपनी पदावधि के दौरान किए गए अवैध व्यक्तिगत कार्यों के लिए उन्मुक्ति ऐसी अवधि के लिए ही परिसीमित है। पहला, अपराध के लिए उनके विरुद्ध जब तक वे पद पर बने रहते हैं तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, किंतु अवधि की समाप्ति पर पदच्युत किए जाने पर या अन्यथा पदावधि के अवसान के पश्चात ऐसी कार्यवाही किए जाने पर कोई रोक नहीं है। दूसरा, सिविल कार्यवाहियों के बारे में कोई उन्मुक्ति नहीं है, किंतु संविधान ने एक प्रतिक्रियात्मक शर्त लगा दी है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनके व्यक्तिगत कार्यों की बाबत सिविल कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं, किंतु राष्ट्रपति या राज्यपाल को 2 मास की लिखित सूचना देने के पश्चात। अब हम लोक अधिकारियों की वाद शक्यता इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा ऊपर कहा गया है, संविधान में सरकारी सेवकों द्वारा अपनी शासकीय या व्यक्तिगत हैसियत के लिए किए गए विधि विरुद्ध कार्यों के लिए व्यक्तिगत दायित्व के बारे में कोई विभेद नहीं किया गया है। संविधान में लोक सेवकों के दायित्व के बारे में केवल एक उपबंध है, किंतु साधारण विधि में उनके शासकीय कार्यों के बारे में दायित्व के संबंध में कुछ शर्तें अधिरोपित की गई हैं, क्योंकि उनकी स्थिति विचित्र सी है। इस बारे में विश्लेषण निम्न रूप से है। पहला, संविदा। यदि सरकारी सेवक द्वारा अपने शासकीय हैसियत में की गई संविदा अनुच्छेद 299 में अधिकथित औपचारिकताओं के पालन में की गई है, तो ऐसी संविदा की बावत संप्रिक्त सरकार दायी होगी। वह अधिकारी नहीं जिसने संविदा निष्पादित की थी। यह बात अनुच्छेद 299 के क्लोज 2 में कही गई है। किंतु यदि संविदा अनुच्छेद 299 क्लोज 2 के निर्बंधनों के अनुसार नहीं की गई है, तो जिस अधिकारी ने उसका निष्पादन किया था वह उसके लिए विधिक रूप से दायी होगा, चाहे उसने संविदा से कोई व्यक्तिगत फायदा न उठाया हो। दूसरा, अपकृत्य। जैसा ऊपर कहा गया है, भारत में सरकार अपने प्रभुता संपन्न कृत्यों के लिए नुकसानदायी देने के लिए दायी नहीं है। क्षमा कीजिएगा, अपकृत्य। जैसा ऊपर कहा गया है, भारत में सरकार अपने प्रभुता संपन्न कृत्यों के लिए नुकसानी देने के लिए दायी नहीं है। ऐसे मामलों में जिस अधिकारी के माध्यम से कार्य किया जाता है उसे भी पूरी उन्मुक्ति है। अन्य मामलों में सरकार के विरुद्ध और व्यक्तिगत रूप से अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी, जब तक कि वह कार्य किसी अधिनियम द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के अनुपालन में सद्भावपूर्वक किए गए न हों। वह न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 के अर्थांतर्गत न्यायिक अधिकारी न हो। इस अधिनियम द्वारा न्यायिक अधिकारी को उसके शासकीय कृत्यों के निर्वहन के लिए कार्यों में सिविल कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति दी गई है, किंतु किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध संविदा या अपकृत्य में सिविल कार्यवाही के लिए जो ऐसे कार्य की बाबत हो जो लोक अधिकारी ने अपने शासकीय कृत्य में किए हों, या जिसका इस प्रकार किया जाना तात्य प्रयित हो, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80-82 की प्रक्रिया संबंधी परिसीमाओं के अधीन होगी। इसमें यह शर्त भी है कि ऐसा वाद लाने के पहले 2 मास की सूचना दी जानी चाहिए। तीसरा है अपराध। लोक सेवक का आपराधिक दायित्व वही है जो सामान्य नागरिक का है। इसके अपवाद हैं, पहला, न्यायिक कार्यों या न्यायिक आदेश के अनुसरण के लिए किए गए कार्यों के लिए कोई दायित्व नहीं है। यह बात भारतीय दंड संहिता की धारा 77-78 में लिखी गई है। ख, न्यायिक अधिकारियों से भिन्न अधिकारी को भी ऐसे कार्यों के लिए उन्मुक्ति है जो विधि या तथ्य संबंधी किसी भूल के कारण सद्भावपूर्वक किया समझता था कि ऐसा करना विधि द्वारा आबद्ध कर है। यह बात भारतीय दंड संहिता की धारा 76 में लिखी गई है। ग, जहां कोई लोक सेवक जिसे केंद्र या सरकार द्वारा उसकी मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है। किसी अपराध का अभियुक्त है जो अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया है या जिसका इस प्रकार किया जाना तात्पर्यित है, जो कोई भी न्यायालय यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। यह बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में लिखी गई है। और चौथा, ऐसे क्षेत्र में जिसमें सैन्य विधि प्रविध थी, व्यवस्था बनाए रखने या पुनः स्थापित करने के लिए किए गए कार्य के लिए संसद उन्मुक्ति अधिनियम बनाकर ऐसे कार्यों को विधि मान्य बनाते हुए संपृक्त अधिकारियों को दायित्व से छूट दे सकती है। यह बात अनुच्छेद 34 में लिखी गई है। और इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।